ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र कल से शुरू। दिल्ली में जापानी एंसेफेलाइटिस का पहला मामला दर्ज हुआ। दिल्ली सरकार गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी और दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से लागू करने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये उपाय स्कूलों पर लागू नहीं होंगे। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग योजना से संबंधित प्रतिबंधों को कम करने के संबंध में एक बैठक करेगा। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की दूसरी रिपोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने में प्रशासन की बड़ी विफलता सामने आई है। न्यायालय ने कहा कि इस संकट का दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। सुश्री आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये विधानसभा का पहला सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय के अनुसार विधानसभा का सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सदन की कुल 3 बैठक होंगी। सचिवालय के अनुसार आवश्यकता होने पर सदन की बैठक का समय बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके से जापानी एंसेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया है। ये संक्रमण क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से लोगों में फैल जाता है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और महामारी वैज्ञानिकों को वेक्टर नियंत्रण उपायों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इन उपायों में मच्छरों की लार्वा में कमी लाने और जापानी एंसेफेलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान सहित समुदाय आधारित पहल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण विंग के माध्यम से विद्यार्थियों को 4 साल का बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आंखों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल होगी।
ये दिल्ली सरकार का दूसरा ऐसा प्रोग्राम है, एक बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम दिल्ली की दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी चलता है और अब ये ऑप्टोमेट्री की बैचलर्स हमारे गुरु नानक आई सेंटर में भी चलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को जानबूझकर इस योजना से वंचित रखा है। एक रिपोर्ट।
श्री नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों और दिल्ली में 70 और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस जन केंद्रित योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि इस योजना के जरिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार तथा 70 और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि कुछ समस्याओं के कारण आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की जा रही है।
दिल्ली सरकार इन प्रिंसिपल आयुष्मान भारत लागू करने के लिए काफी समय से तैयार भी है। दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा देती है और आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सुविधा देती है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है वो ये है कि जब दिल्ली सरकार सारी सुविधा हॉस्पिटल में फ्री दे रही है तो जो एक्सक्लूजन्स आयुष्मान भारत में हैं, उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें।
प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी रात्रि प्रवास संवाद अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत भाजपा विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिल्ली की झुग्गियों का दौरा किया जा रहा है, जहां वे लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसके अंतर्गत पार्टी नागरिकों को आ रही परेशानियों को जानने का प्रयास कर रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान दिल्ली के गरीब, वंचित, मजदूर, श्रमिक, पीड़ित, बेरोजगार, युवा, महिलाओं, वृद्धों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 2025 के चुनाव में विजय हासिल करने का संकल्प है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में 1,951 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि दिल्ली में 1,268 मेगालीटर प्रतिदिन सीवेज उपचार क्षमता निर्माण के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 8 परियोजनाएं चालू हैं। श्री चौधरी ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के सभी चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की हर महीने निगरानी की जा रही है और इसकी रिपोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को फिर से लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले को लेकर जनता को बधाई देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदी गई इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी अब सीधे खरीदारों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में मेट्रो रेल की जिन परियोजनाओं को 2024 में पूरा किया जाना था, उनमें से एक वर्ष से अधिक की देरी हो गई है। लोकसभा में दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से सांसद प्रवीण खंडेलवाल द्वारा मॉडल टाउन मेट्रो रेल परियोजना के पूरा होने में हो रही देरी के कारणों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण और उसके बाद भूमि की उपलब्धता था, पेड़ काटने की अनुमति में देरी के कारण मेट्रो परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। श्री मनोहर ने बताया कि भारत सरकार ने 2019 में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के अंतर्गत पिंक लाइन एक्सटेंशन का हिस्सा और मजेंटा लाइन एक्सटेंशन का हिस्सा मॉडल टाउन के पास से गुजर रहा है। दिल्ली के बदरपुर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड द्वारा 884.5 एकड़ क्षेत्र में इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है। लोकसभा में दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के सवाल का जवाब देते हुए विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने बताया कि बदरपुर इको पार्क का विकास 389 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पार्क में बोटिंग, एम्फी थिएटर, योग और ध्यान केंद्र, बटरफ्लाई पार्क, जंगल आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं होंगी। श्री नाइक ने बताया कि इस पार्क का निर्माण जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में आज एक धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने कहा कि फोरेंसिक विभाग, क्राइम टीम और स्पेशल सेल ने विशेषज्ञ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
पुलिस की तमाम टीम्स और बाकी जो हमारा स्पेशल सेल है, फोरेंसिक्स की टीम्स हैं और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, सब वहाँ मौके पर हैं। धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। इस विषय में जैसे भी कुछ पता चलेगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इस घटना पर कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का दायित्व केंद्र का है। उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाए।
अमित शाह जी के पास एक काम है, लेकिन उनके घर के ही 20 किलोमीटर की रेडियस में रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, रोज गोलियां चल रही हैं और अब बम ब्लास्ट होने लगे, जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते थे, सुना करते थे कि बिजनेसमैन को धमकियां आ रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, जहां दिन दहाड़े बुजुर्गों पे गोली चल रही है।
हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग से गीता मैराथन के साथ शुरू हुआ। राज्य के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। श्री बेदी ने मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के व्यापार सुगमता और विनियामक मामलों के पोर्टल का आज नई दिल्ली में शुभारंभ किया। ये पोर्टल केंद्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा व्यापार सुगमता पर की गई प्रमुख पहलों और इससे संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि सरकार की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली ने व्यापार सुगमता में सुधार किया है। इस प्रणाली से विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों तथा विभागों को एक साथ लाने में सफलता मिली है। श्री गोयल ने कहा कि जन विश्वास 2.0 विधेयक के अंतर्गत सरकार 300 से अधिक कानूनों को समाप्त करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। उन्होंने परिसंघ से अपने सदस्यों को कानूनों के प्रति संवेदनशील बनाने और कानून की भावना का सम्मान करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कानून की खामियों का फायदा उठाने की प्रवृत्ति के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का आज नई दिल्ली में शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि यह प्लेटफॉर्म थल सेना के सभी प्रशिक्षण केंद्रों को सहजता से एकीकृत करने में मदद करेगा। प्रशिक्षण अधिकारियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ कई पाठ्यक्रमों के लिए अपना पंजीकरण करने की सुविधा होगी। थल सेना के श्रेणी ए के 70 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के 96 पाठ्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस और एशिया प्रशांत भागीदारों से विशेष रूप से तीन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपील की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फ्रांसीसी विदेश व्यापार आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस सहयोग में द्विपक्षीय समझौतों और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग को मजबूत करना और सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।
I call upon our French and Asia Pacific partners to deepen collaborations in three areas. One, enhancing trade relations through bilateral agreements. Two, strengthening technological cooperation to address global challenges. Three, promoting cultural and educational exchanges.
श्री गोयल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और फ्रांस का व्यापार 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, एरोस्पेस, रक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत का एक अग्रणी देश के रूप में उभरना निश्चित है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के प्रयास जारी हैं। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र कल से शुरू। दिल्ली में जापानी एंसेफेलाइटिस का पहला मामला दर्ज हुआ। दिल्ली सरकार गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी और दिल्ली सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।